कल हमने चर्चा की कि मेडिटेशन के द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन तन और मन दोनों कैसे स्वस्थ रहते और मेडिटेशन की विधि भी समझी। अब आज हम तीन बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, इस मेडिटेशन को राजयोग क्यों कहते हैं? दूसरा, इस मेडिटेशन में और अन्य मेडिटेशन में क्या अंतर है? और तीसरा, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा कौन कौन सी शक्तियों की प्राप्ति हमें होती है और उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कैसे करें? तो सबसे पहले हम लेंगे कि इस मेडिटेशन को राजयोग क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस के बाद आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की राजा बन जाती है, मालिक, इसलिए राजयोग। दूसरा, इसलिए राजयोग कहते हैं कि इस योग के अंदर अनेक प्रकार के राज, रहस्य स्पष्ट होते। अभी तो बेसिक चल रहा है, पर और गहराई में गोते लगाएंगे तो स्वयं के बारे में राज, सृष्टि के चक्र के बारे में, परमात्मा के बारे में, माना कई प्रकार के राज ये खोलता है। तीसरा, इसलिए राजयोग कहते हैं कि इस योग को सिखाने वाला कोई भी मनुष्य या देहधारी गुरु नहीं है। इस योग को जो स्वयं राजाओं के भी राजा योगेश्वर परमात्मा है, डायरेक्ट उन्होंने सिखाया। कैसे सिखाया ये कल के सेशन में बताएंगे। अब हम चलते हैं एक मुख्य विषय पर कि संसार में जो मेडिटेशन अनेक प्रकार के चलते हैं उसमें और इस राजयोग मेडिटेशन में मुख्य अंतर क्या है। आप लोग 7-8 दिन हो गए प्रैक्टिस करते करते, तो क्या अंतर आपने देखा? पहले आप शेयर कीजिए, फिर हम बताएंगे क्या डिफरेंस पाया आपने। हाँ बताएंगे। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, हाँ पहले सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज मानते थे, बहुत अच्छा। और बताएं, बताइए बताइए, अब तो ओपन हो गए ना, अब तो 7-8 दिन हो गए आते आते। हाँ बोलिए, हाथ ऊंचा करके बताइएगा क्या अंतर पाया, क्या डिफरेंस पाया कि नहीं शेयर करेंगे। सभी का मौन है आज। क्या डिफरेंस देखा राजयोग मेडिटेशन में? देखिए, संसार में जो योग चलते हैं उसमें मुख्यतः 3-4 बातें आती हैं। पहला, या तो फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक आसन, या कंसंट्रेशन ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई एक वस्तु पर एकाग्रचित होना बताया जाता, या थॉटलेस हो जाना, विचार शून्य हो जाना, या कोई मंत्र दे देते हैं, या ऐसा कह लें कि अन्य प्रकार के मेडिटेशन में केवल मन को शांत किया जाता है, और इस राजयोग मेडिटेशन में केवल मन को शांति नहीं करते, पर जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है उससे शक्तियां लेकर मन को शक्तिशाली बनाया जाता है। ये पहला अंतर। दूसरा, कि इस मेडिटेशन के द्वारा आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ कराया जाता है। तीसरा अंतर, कि इस मेडिटेशन में जो सोर्स ऑफ मेडिटेशन है, अब इसको आप ध्यान से समझिए कि देखिए, पहले भी आपको बताया कि हर व्यक्ति का सोर्स ऑफ मेडिटेशन, शक्ति लेने का सोर्स अलग अलग होता है, पर यहां पर जो सोर्स ऑफ मेडिटेशन है वो डायरेक्ट परमात्मा को बताया कि डायरेक्ट आप पावर हाउस से लिंक जोड़ो, तो सोर्स सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है। कई भाई बहनों ने पूछा था, अलग से मिलते ना, कि बहन जी कैसे आप कह सकते कि इस प्रकार मेडिटेशन करने से खुशी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, भय दूर होगा। तो ये आप अपने आप से पहले पूछिए कि आखिर हम शक्ति किससे ले रहे हैं, किससे योग लगा रहे हैं। जो खुशियों का सागर, शांति का सागर, सर्व प्राप्तियों का भंडार है, सर्व शक्तिवान है, उससे हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो फिर अपने आप से पूछिए कि जो सर्व शक्तिवान है, खुशियों का सागर है, अगर उससे योग लगाने के बाद भी जीवन में खुशी नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी, तो फिर इस संसार में खुशी कहां से मिलेगी। पर हां, प्रैक्टिस लगती है, अभ्यास लगता है, पर निश्चित इसमें प्राप्तियां होती हैं। कईयों ने ये भी पूछा, मेजॉरिटी का प्रश्न था कि बहन जी हमको सालों हो गए मेडिटेशन करते, कई को कितने साल, किसी को कितने, पर उनका ये था कि जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो रही, तो क्या कारण। हमने भी सोचा भी क्या कारण, तो आप ये अपने आप से पूछिए कि अभी तक आपके मेडिटेशन का सोर्स क्या था, क्या आपने स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा शिव बाबा को वो जो है जैसा है उस स्वरूप से याद किया। क्योंकि कहते हैं ना कि मैं जो हूं जैसा हूं उस यथार्थ रूप से याद करेंगे तो शक्तियां मिलेगी। तो अभी तक परमात्मा का यथार्थ परिचय ही नहीं था, पर अब आपको स्वयं का भी परिचय दिया कि मैं आत्मा भी बिंदु और परमात्मा का भी परिचय दिया। अच्छा, कईयों ने ये भी पूछा है, सभी के प्रश्न के हम इकट्ठे जवाब देते कि और भी किसी के मन में हो तो सॉल्व हो। कईयों का ये भी प्रश्न था कि बहन जी, आपने जो बिंदु स्वरूप बताया शिव बाबा का, वो नहीं अभी सामने आता है, कोई कोई प्रतिमा सामने आती है, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिस नहीं थी ऐसे मेडिटेशन की। तो कईयों का प्रश्न था कि क्या हम उससे शक्ति ले लें? तो देखिए, हमने आपको डायरेक्ट पावर हाउस का परिचय दिया। आपको बताया था ना कि महान आत्माएं अनेक हैं, देवताएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। तो हमने पावर हाउस का परिचय दिया और बाकी सारे ऐसा कह लो सब स्टेशन से होता है ना, एक पावर हाउस और बाकी सब स्टेशन। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप डायरेक्ट पावर हाउस से शक्ति लें या सब स्टेशन से। तो धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद जब कनेक्शन जुटता है तो नेचुरल शक्तियां आती हैं, पर हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये कुछ बातें आपको अंतर की बताई कि इस मेडिटेशन के बाद आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ होता है और परमात्मा की शक्तियों का अनुभव स्वयं में होता है। अब हम चलते हैं आज के मुख्य सब्जेक्ट पर कि इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस के बाद कौन कौन सी शक्तियों की प्राप्ति हमें होती है और उन शक्तियों का प्रयोग हम व्यवहारिक जीवन में कैसे करें। आज का बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ सेशन। यहाँ मुख्य 8 शक्तियां बताई हैं, पर सभी को तो विस्तार में चर्चा नहीं कर सकते। मुख्य मुख्य शक्तियों के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहला बताया कि मेडिटेशन के द्वारा सहन शक्ति की प्राप्ति होती है, पावर ऑफ टॉलरेंस, और सहन करने की शक्ति हर क्षेत्र में आवश्यक है। यहां बताया है कि एक बच्चा है, वो आम के वृक्ष को पत्थर फेंक रहा है, फिर भी वृक्ष क्या दे रहा है बदले में? फ्रूट दे रहा है, फल। तो देखिए, किसी किसी के अंदर सहन करने की शक्ति बिल्कुल नहीं होती। और देखो, सहन करना एक संकल्प का खेल है। अगर आपने सोच लिया कि मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता, तो आप में सहन शक्ति नहीं आएगी। और आप ये सोच लेंगे कि हम सब कुछ सहन करके चलेंगे, मुझे यह सहन करना ही है, तो इतना सोचते ही सहन शक्ति आ जाती है। और प्रैक्टिकल जीवन में किन किन बातों को सहन करना पड़ता है? किन किन बातों को? किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया, कुछ बोल दिया, हम कहते हैं ना किसी में बिल्कुल सहन शक्ति नहीं, कहते हैं किसी ने एक सुनाया और हम नेले पर देला, हम बोलते हैं कि हम भी कोई कम है क्या? पर मान लो किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया, तो कौन सी ऐसी बात याद रखो? क्या पॉइंट आपको ऐसा बताया? आज बीच बीच में आपका टेस्ट भी लेंगे, आज संडे ना, तो जो बात बताई है तो एक दो बात आपसे पूछेंगे भी, ताकि हमको भी याद रहे कि आपको कितना समझ आए। बताइए, कौन सी ऐसी ज्ञान की पॉइंट? हाँ, क्या ऐसी बात याद रखे कि हमको एकदम सहन करना आ जाए? किसी ने बुरा व्यवहार किया, कुछ बोल दिया, तो क्या याद रखे? हाँ बताइए। हाँ हम, हाँ बहुत बढ़िया, कि सबका वैरायटी पार्ट है। हाँ, आपका तीर लग गया, राइट आंसर है। ये अंदर में ज्ञान रहे, आपको बताया ना कि ये वैरायटी वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है और इसमें हर एक एक्टर का अपना अपना रोल अलग अलग है। इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है, सब निर्दोष हैं। तो आप वैरायटी पार्ट का एंजॉय करो। देखिए, परिवार के अंदर भी मानो 10 लोग हैं, तो सबके अलग अलग स्वभाव संस्कार होते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सबके स्वभाव संस्कार को एडजस्ट करके चलें, या अपने परिवार के अंदर एक भय का या ईर्ष्या नफरत इसका माहौल बना दे। तो अगर ये ज्ञान रखकर चलते हैं कि भाई हम सब एक्टर्स हैं और है सब उस परमात्मा की ही संतान और सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, और ये अंदर भावना होती है जो हमने बताया था ना कि वसुधैव कुटुंबकम, कि सबका कल्याण हो, तो हम परिवार के अंदर एक स्नेह का माहौल बना सकते हैं। और देखिए क्या सहन करना होता है, परिस्थितियों को भी सहन करना होता है। कभी कभी एक के बाद एक परिस्थिति जीवन के अंदर आती जाती है और कई लोगों में सहन शक्ति बिल्कुल नहीं होती, पर देखिए कि जीवन एक लंबा सफर है, इसमें सब प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। कभी सुख के क्षण आते कभी दुख के आते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो थोड़े समय के लिए आती हैं, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, और कुछ बातें कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड योर कंट्रोल होती है, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो तनाव मुक्त जीवन के लिए ऐसी बातें, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में हैं, जिनके लिए आप कुछ कर सकते हो, उस पे अपना समय लगाओ, उस पे अपनी शक्तियां लगाओ, और ऐसी बातें, ऐसी परिस्थितियां जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए कहते हैं समय पर छोड़ दो। टाइम इज द बेस्ट हीलिंग फैक्टर। समय आने पर आप देखेंगे कि 90% प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, सब दिन होतना एक समान। जो परिस्थिति जीवन में आज आई है वो कल नहीं थी और आने वाले कल में भी नहीं रहेगी। तो क्या बताया कि ऐसी बातें, ऐसी परिस्थितियां जो आपके कंट्रोल में है, जिसके लिए आप कुछ कर सकते हो, उस पे अपना समय और शक्तियां लगाओ, और ऐसी बातें जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है उसको समय पर छोड़ दो, और दूसरा परमात्मा पर, बाबा पर छोड़ दो, सब हल्का कर देगा। और कुछ बातों को जीवन में स्वीकार करके चलो। आप एक दिन यही चेक करना कि सुबह से लेकर रात तक कितनी बार मन में क्यों उठता है, ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे क्यों हुआ, होता है ना। तो जिन बातों के लिए मन में क्यों उठता है उसमें हमें कष्ट होता है, और जिन बात को हम स्वीकार कर लेते कि भाई ये तो होना ही था, तो उसमें हम हल्के रहते। तो कुछ बातों को जीवन में स्वीकार करके चलो कि ये तो होना ही है, तो आप हल्के रहोगे। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं, छोटा एग्जाम्पल कि मानो आप एक बहुत बड़ी फैक्ट्री रन करते हो और मानो 100 वर्कर्स आपके साथ काम करते हैं। अब आप चाहें कि सब 100% एक्यूरेसी से काम करें, तो ऐसा हो सकता है? भावना आपकी अच्छी है पर नहीं, कुछ वर्कर्स उसमें ऐसे रहेंगे जो 100% परफेक्ट, कुछ ऐसे रहेंगे जो 60% एक्यूरेसी से काम करेंगे, कुछ ऐसे रहेंगे कि जिन्हें कितना भी समझाओ वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो सबकी मेंटल लिमिट्स, मेंटल कैपेसिटीज अलग अलग होती हैं। तो कुछ बातों को स्वीकार करके चलो। मानो आप लाखों का बिजनेस करते हो, अब उसमें छोटा मोटा नुकसान तो हो सकता है। अब हर छोटी छोटी बात पर हम टेंस हो जाएं, तो वो तो गलत है। तो कुछ बातों को स्वीकार करो। फॉर्मूला बताया था आपको, एक दिन तीसरे दिन बताया था, याद है सभी को? ABCD फॉर्मूला, कि अवॉइड करो कुछ को बाईपास, किसी को कैंसल। अब मान लीजिए किसी ने बहुत ही बुरा व्यवहार कर दिया। कई कई कहते हैं कि बहन जी इसमें तो ऊपर से नीचे तक ही दोष दिखता है, नहीं दिखता निर्दोष, तो फिर क्या करें? तो मान लो किसी ने बहुत ही बुरा व्यवहार कर दिया, निर्दोष दृष्टि नहीं देख सकते, तो कम से कम आप बड़े बनकर, महान बनकर उस सामने वाले व्यक्ति को क्षमा तो कर सकते कि वो भी नहीं कर सकते ना? क्या कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, कि क्षमा करना वीरों का गुण है, महानता की निशानी है। दूसरों के द्वारा की हुई गलतियों के कारण कभी कभी हमारे संबंधों में एक खटास पैदा हो जाती है और उसके कारण हमारे वर्षों पुराने संबंध बिगड़ जाते हैं, और कई बार हम इसके कारण कई सुनहरे अवसर पर अपने आप को अकेला पाते हैं। पर दूसरों के द्वारा की हुई छोटी सी गलती हम अपने अहम के कारण, ईगो के कारण क्षमा नहीं कर पाते। जबकि होता क्या है कि दोनों पार्टीज चाहती है कि आपस में बात करें, पर पहले झुके कौन? तो आज का सबसे पहला होमवर्क, आज हम 2-3 छोटे छोटे प्रैक्टिकल प्रयोग के होमवर्क देंगे। सबसे पहला होमवर्क कि आज यदि किसी से ऐसी गलती हो गई हो जो जिसके कारण आपके वर्षों पुराने संबंध बिगड़े हो और आपके मन में अगर कोई गांठ हो, तो आज आप बड़े बनकर, महान बनकर सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर देना। क्षमा भाव, क्षमा वीरस्य भूषणम। आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति तो आपको अपनाने के लिए नालायक होता है, बस इंतजार होता है हमारी क्षमा भाव का। तो एक बार आप क्षमा करके देखिए तो सही, सारा संसार आपको अपना नजर आएगा। देखिए इस पर हम एक प्रैक्टिकल आपको अनुभव सुनाते कि एक जगह की बात है, मैं इसलिए अनुभव शेयर करते कि आपको भी उससे बेनिफिट मिलता जाए। कि ऐसे शिविर में होमवर्क दिया तो एक भाई ने हमको सुनाया, पूरे स्टेज पे ही सुनाया था सारी सभा को, कि देखो क्षमा भाव का क्या रिजल्ट होता है। वो एक ऑफिस में बॉस थे और उन्होंने सुनाया कि जो मेरे सब ऑर्डिनेट्स थे उनके साथ मेरा बहुत क्लैशेस चलता था, और उन बताया कि एक कोई गलती हो गई थी उससे, और बोले उसके कारण हमारी आपस में बहुत बातचीत बंद थी, और बोले उस एक के कारण सारे ऑफिस का माहौल डिस्टर्ब, बोले कई फाइल्स थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो उन्होंने सुनाया कि बोले जैसे ही मैंने आज सुना कि आज बड़े बनकर महान बनकर क्षमा करना है, तो बोले बस बेंजी में गया और बोले उससे बात करने की देर थी, बोले जैसे ही मैं उससे बात करने लगा वो तो मेरे गले ही लग गया, और बोले ऐसे हमारे वर्षों पुराने संबंध जो बिगड़ गए थे वो वापस ठीक हो गए, और बोले सारे ऑफिस का माहौल ही ठीक हो गया। तो क्या कहने का भाव क्यों सुनाया ये कि कभी कभी दोनों पार्टीज चाहती है कि हम आपस में बात करें, क्योंकि बस एक गांठ मन में बंधी होती, तो पहले झुके कौन। तो आज यदि आप महान बनना चाहते हैं, अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं, तो किसी से ऐसी कोई गलती हो गई हो जिसके कारण आपके संबंध बिगड़े हो, तो आज आप महान बनकर वीर बनकर उस सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर देना। करेंगे सभी ये उम्र? तो क्षमा वीरस्य भूषण। नेक्स्ट, और आगे बढ़े। दूसरी शक्ति है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। अब ये शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन के लिए बहुत जरूरी है, सामना करने की ताकत। यहाँ बच्चे कर रहे हैं, आप देखिए कि कई कई लोगों में बिल्कुल सामना करने की ताकत नहीं होती। होता है ना कभी कि फोन पर न्यूज सुनाई कि फलाने को अटैक आया, और न्यूज सुनते सुनते खुद ही चले गए। क्यों भाई, है ही नहीं ताकत कि उस सिचुएशन को फेस करें। तो प्रैक्टिकल जीवन में हर फील्ड के अंदर सामना करने की ताकत लगती है, और ये शक्ति मेडिटेशन देता है। क्यों लगती है सामना की करने की ताकत? क्योंकि देखिए कि इस वर्ल्ड ड्रामा में सब कुछ अचानक होता है। कई भाई बहन कहते हैं कि काश पहले से ही पता होता कि ये परिस्थिति आने वाली है तो हम पहले ही तैयार हो जाते। पर आप सोचिए कि अगर शिव बाबा परम धाम से आपको लिस्ट भेज देता कि भैया इस दिन ये होने वाला है, और इस दिन ये घटना घटित होगी, इस दिन ये मिलने वाला है, तो क्या इस वर्ल्ड ड्रामा का कोई एक्साइटमेंट एंजॉयमेंट रह जाता? रहता नहीं। तो अचानक का ही तो खेल है सारा। तो सब कुछ अचानक होता है, तो उस अचानक के पेपर में पास होने के लिए सामना करने की ताकत लगती है। और बताइए ऐसी कौन सी हमने आपको ज्ञान की बात बताई अभी तक कि वो याद आते ही हम सामना कर सकते हैं। एक बात हमने बता दी है और दो आज हम नहीं बताएंगे, दूसरी नई बातें और बताएंगे, पर एक कौन सी बताई अभी तक? बताइए किसका तीर लगता है आज? बीच बीच में टेस्ट हो रहा है आप लोगों का। बता चुके एक बात कि याद करते ही एकदम ताकत आ जाए सामना करने की। हाँ बताइए, जवाब आ रहा है? हाँ बिल्कुल राइट जवाब आया, आपका तीर लग गया कि हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। दूसरी बात ये, आज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दें कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और प्रभु की छत्र छाया में हूँ, प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, तो भगवान के बच्चों का अकल्याण कभी भी नहीं हो सकता। आप देखिए कि लौकिक में भी क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा चाहते चाहते नहीं, तो वो तो फिर परम पिता है। तो वो अपने बच्चों का बुरा कैसे चाह सकता है। तो आप ये अपने अंदर आज पक्का करें कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मेरे साथ है और भगवान के बच्चों का अकल्याण कभी भी नहीं हो सकता। इतनी आपको निश्चय हो। मानो बाहर से अकल्याण दिख भी रहा है, पर अगर आपको निश्चय है कि भगवान के बच्चों का अकल्याण असंभव है, तो आपके निश्चय की शक्ति उस अकल्याण के सीन को भी कल्याण में परिवर्तन कर देगी। पर ये छाप ले आज, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम बाहर का रूप देखते हैं तो उसमें दिखता है अरे ये तो सब बुरा ही हो गया। पर ये याद रखें जो गीता में कहा है ना कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होगा वो भी अच्छा। कभी कभी आगे चल के मालूम पड़ता है। देखो इस पर हम आपको एक कहानी सुना देते हैं तो कहानी से बात याद रहेगी। कईयों ने सुनी होगी, बचपन में बहुत सुनाई जाती है, पर फिर भी हम थोड़ा रिवाइज करा दें। कैसे जो हुआ अच्छा कि बताते हैं कि एक बार एक राजा और मंत्री शिकार पर जाते हैं। तो राजा की उंगली शिकार खेलते खेलते कट जाती है, मानो उसको चोट आ जाती है। तो मंत्री बोलता बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो राजा कहता एक तो मेरे को चोट आ गई और बोलता बहुत अच्छा हुआ। तो वो उसको पकड़ के जेल में डाल देता है। फिर राजा अकेले ही चला जाता है शिकार पर। अब क्या होता है कि कुछ दूरी पर देवी को बलि चढ़ानी होती है, तो वो लोग राजा को पकड़ने आते हैं बलि के लिए। पर देखते हैं कि अरे इसकी तो उंगली खंडित है, माना खंडित है, वो चोट आई हुई थी ना, तो खंडित की बलि नहीं चढ़ती, तो वो उसको छोड़ देते हैं। फिर राजा को समझ में आया कि अरे मंत्री ने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, बोले पहले तो उंगली कटी थी अभी तो पूरा ही चला जाता। फिर वो आकर मंत्री को छोड़ देता और मंत्री से पूछता कि भाई ये तो समझ में आया कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, पर बोले मैंने तुमको जेल में डाला ये क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री बोला अच्छा हुआ मैं जेल में था, नहीं तो मुझे ही ले जाते। तो क्यों सुनाइए कि जो कुछ भी होता है सब बात में हमारा कल्याण समाया हुआ है। पर इतना निश्चय आप में हो कि बाबा का बच्चा हूँ, बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ, तो मेरा अकल्याण असंभव। इतना निश्चय। वर्ल्ड ड्रामा में जो भी सीन आपके सामने से गुजरे, दिल से निकले कि इसमें ही कल्याण समाया था। क्योंकि बताया ना, क्यों क्या करते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना था, ये तो अच्छा नहीं हुआ, तो फिर हम में डिस्टर्बेंस होता है। पर नहीं, दिल से निकले कि जो हुआ इसमें ही कल्याण था। बताया आपको कि लौकिक माता पिता भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, तो ये तो फिर परम पिता है। पर कभी कभी वर्तमान हम देखते हैं तो ऊपर से लगता है कि बुरा हुआ। और वैसे भी आप देखिए कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है इस वर्ल्ड ड्रामा में, वो बिना किसी कारण नहीं हो रहा है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। तो कुछ भी बात बिना कारण नहीं हो रही है। तो ये याद रख लेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो आप में सामना करने की शक्ति आ जाएगी। तो क्या छाप लो आज कि भगवान के बच्चों का अकल्याण असंभव। नेक्स्ट, अब सारी शक्तियां का डिटेल तो हम नहीं कर सकते, बहुत विस्तार है, पर मुख्य मुख्य बताते आपको। यहां बताया है परखने की शक्ति, कि मेडिटेशन परखने की भी शक्ति देता है। यहां बताया कि जैसे एक जौहरी है और वो असली और नकली हीरे को परख लेता है, तो इस प्रकार कई अवसर जीवन में आते हैं। और कहते हैं कि जिसने अवसर को परख लिया उसका भाग्य चमक गया और अवसर दोबारा लौट कर नहीं आता, तो मेडिटेशन अवसर को परखने की शक्ति भी हमको देता है। नेक्स्ट, निर्णय शक्ति, पावर टू जज, डिसीजन मेकिंग पावर। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल जीवन के लिए, राइट समय पर राइट निर्णय, सही समय पर सही डिसीजन। नहीं तो कहते ना कभी कभी कि अरे समय निकल गया फिर बाद में निर्णय लिया तो क्या बात। पर विशेषता तो क्या है कि सही समय पर सही निर्णय लें। यहाँ बताए कि तराजू जो है वो हर चीज को बैलेंस में कर देता है। तो देखिए, निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए दो बात, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़े उसके लिए दो बातें, सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए, पहला, आप अपनी मन और बुद्धि को साफ और स्वच्छ रखें, क्लीन और क्लियर। कहते हैं कि साफ चीज के अंदर निर्णय स्पष्ट होता है। तो किन किन बातों से साफ? आप चेक करें कि हमने अपने मन और बुद्धि में क्या क्या भर रखा है, क्या क्या भर रखा है, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति बदले की भावना, और बहुत व्यर्थ के संकल्प इसमें भर रखे हैं। पर जिसका मन और बुद्धि इन सब बातों से साफ होगा, बुरी भावना, ईर्ष्या, व्यर्थ संकल्प, तो उसकी बुद्धि सही समय पर सही निर्णय ले सकेगी। दूसरा, सही निर्णय लेने के लिए आज हम आपको इंस्टेंट बैटरी चार्जिंग मेथड बताएंगे कि आपकी बैटरी इंस्टेंट चार्ज हो जाए। आजकल बताया ना कि हर व्यक्ति इंस्टेंट चाहता है, तुरंत हो, तो तुरंत आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज रहे, निर्णय शक्ति सही रहे, तो उसके लिए कनेक्ट योर लिंक विद द सुप्रीम, कनेक्ट योर लिंक विद सुप्रीम। आप अपनी बुद्धि का तार जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है उससे निरंतर जुड़ा रखें, तो आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि किसी भी काम का निर्णय आप सरलता से और सफलता से ले सकेंगे। देखिए कैसे इंस्टेंट बैटरी चार्ज करना। आपको हम रोज क्या कहते हैं कि जो भी स्पिरिचुअल इंजेक्शन दिया उसको हर एक घंटे में करो। ऐसा क्यों नहीं कहते कि भाई 10 मिनट सुबह कर लो, 10 मिनट रात को कर लेना। हर एक घंटे में हम करते हैं तो हमारी बैटरी परमात्मा से लिंक बनी रहती है। फिर कोई भी समस्या आएगी तो आप सॉल्यूशन बाबा से पूछ सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, कई कह रहे थे, एक भाई हमारे पास आए कल, बोले बहन जी मैं हर एक घंटे में यही करता रहूं, दो दो मिनट तो अपना काम कब करूंगा। तो आप देखिए कि अगर हर एक घंटे में आप दो मिनट ये करते हैं तो इससे आपको कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि और ही आप में शक्ति भर जाएगी। और इससे क्या फायदा होता है कि वर्क करते करते बीच बीच में जो प्रेशर्स डेवलप होते वो आपके वहीं सॉल्व हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि आप में और काम करने की एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। ये स्पिरिचुअल इंजेक्शन से, जैसे नहीं मानो कोई दौड़ रहा है और बीच में ग्लूकोज पी लिया फिर आगे दौड़ने लगा, है ना, तो और ही उसको शक्ति मिलेगी। तो आप काम कर रहे हैं और एक घंटे में अगर दो मिनट ये स्पिरिचुअल इंजेक्शन कर लिया तो अगले घंटे काम करने की मेंटल पावर आपको मिलेगी, और आप पाएंगे कि जो काम आपका एक घंटे में होना था वो 45 मिनट 40 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। नहीं तो व्यक्ति की अननेसेसरी बुद्धि उलझ जाती है वर्क के अंदर, तो जब बुद्धि उलझ जाती है तो समय ज्यादा नष्ट होता है, शक्तियां भी वेस्ट होती हैं। पर कम समय में ज्यादा काम हो सफलतापूर्वक काम हो तो उसके लिए आवश्यक है कि हम ये स्पिरिचुअल इंजेक्शंस जो आपको देते हैं वो हर एक घंटे में, या चलो कोई बहुत बिजी तो दो घंटे में एक बार कर सकता है। इतना बिजी तो कोई नहीं कि दो घंटे में दो मिनट भी नहीं निकाल सके। तो आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपना काम सफलतापूर्वक और फास्ट गति से कर सकेंगे, और इससे आपकी बैटरी इंस्टेंट चार्ज रहेगी और क्विक डिसीजंस आप ले सकेंगे। ठीक है, तो ये इंस्टेंट मेथड आपको हमने बताई। अब और आगे बढ़ें। अब जो पावर आपको बता रहे हैं ये प्रैक्टिकल संबंधों के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे संबंध आपस में कैसे मधुर रहें। ये शक्ति है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति, एडजस्टमेंट पावर। कहते हैं ना, एडजस्टमेंट इज द अनदर नेम ऑफ लाइफ। तो हमारे संबंधों में मधुरता के लिए एडजस्टमेंट पावर चाहिए। यह बताया कि देखिए, छोटी छोटी नदियों का जल सागर में समा रहा है, फिर भी सागर सभी को एडजस्ट कर रहा है। तो क्या क्या एडजस्ट करना होता है? मेडिटेशन ये समाने की शक्ति देता है कि हम हार जीत निंदा स्तुति सब में एक समान रह सके। नहीं तो कई लोग होते हैं कि हार हुई मानो थोड़ी कभी तो एकदम उदास, या कभी जीत हुई तो एकदम उछल गए। पर मेडिटेशन बैलेंस सिखाता है, न एकदम हाई न एकदम लो, बैलेंस अच्छा होता है। एकदम हाई भी अच्छा नहीं। और क्या क्या एडजस्ट करना होता है, क्या क्या समाना होता है? देखिए, हम संगठन में रहते हैं तो हमको समाना होता है दूसरों की गलतियों को, कमजोरियों को। पर हम लोग और ही क्या करते हैं कि दूसरे की छोटी सी गलती पकड़ में आई नहीं और उसको सारे वातावरण में फैला देते कि ये व्यक्ति ऐसा है। पर आप देखिए कि अगर सचमुच आप किसी को बदलना चाहते हैं, सचमुच किसी में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आप उसे टॉन्ट मारकर नहीं बदल सकते, पर उसके बजाय आप उसके भीतर की शक्तियों को जागृत करो, उसकी महानताओं को रियलाइज कराओ। कोई व्यक्ति अगर बदलता भी है तो अपनी महानताओं से बदलता है। हम देखते हैं घरों के अंदर कि जैसे 10th बोर्ड्स की एग्जाम्स आई नहीं, पेरेंट्स अपने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में रोज ये कहते हैं कि तू कमजोर है, तू बुद्धू है, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। अब पहले ही वो कमजोर मान लो, और रोज उसको यही बोलो तू कमजोर है, तू कमजोर है, तो और ही इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या भर जाएगा, मैं तो कमजोर ही हूं, फेल ही हो जाएंगे। तो किसी को बदलना है तो उसकी कमजोरियों का नहीं वर्णन करो, पर उसके भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत कराओ कि नहीं, तुम तो भगवान के बच्चे हो और तुम शक्तिशाली हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इस पर हम आपको एक हंसी की बात सुनाएं कि एक बार एक ऐसे भाई थे, ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने हमको हंसी में ही सुनाया कि बोले, बहन जी क्या है, मेरी आदत है कि मैं ऑफिस में रोज 5-10 मिनट लेट ही पहुंचता हूँ। बोले मेरा नेचर है। तो बोले अब लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया कि ये तो लेट लतीफ है, सब उसको लेट लतीफ नाम से जानते थे। तो बोले अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि समय पर जाऊं, पर बोले अब सोचता हूँ कि नाम ही लेट लतीफ है तो और ही लेट जाऊं। तो ये तो हंसी में सुनाया, पर क्या कहने का भाव कि अगर सचमुच में आपको किसी को बदलना है तो आप उसके भीतर की छुपी हुई शक्तियों को जागृत कराएं, उसकी महानताओं को रियलाइज कराएं। और देखिए, एडजस्टमेंट वर्ड अगर इसका बाइफर्गेशन करें तो किससे बना है ये? एड प्लस जस्ट। एड माना अवॉइड, अवॉइड जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, कि कोई भी सिचुएशन घटना मानो आपके अनुकूल नहीं हो रही है, तो आप इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करें। उस बात को, उस सिचुएशन को, उस घटना को कुछ देर के लिए अवॉइड कर दें, पोस्टपोन कर दें, और आप देखेंगे कि अवॉइड कर देंगे तो फिर उचित समय पर उचित बात कहेंगे तो उसका रिजल्ट भी सही निकलेगा। तो इमीडिएट रिएक्ट ना करके उस बात को, उस सिचुएशन को कुछ देर के लिए अवॉइड कर दें कि भाई बाद में बात करेंगे। और एडजस्टमेंट क्या करना होता है, प्रैक्टिकल, कि देखिए मान लीजिए परिवार में 5 भाई हैं, तो सबके अंदर गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। बताए ना, सबकी अपनी अपनी मेंटल लिमिट्स होती है। कोई 100% एक्यूरेसी से काम करेगा, कोई 60%। पर हमारी दृष्टि किस पर होना चाहिए? संबंधों में यदि आप मधुरता चाहते हैं तो हमारी दृष्टि एक दूसरे की विशेषताओं पर होनी चाहिए। पर होता उल्टा है। हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के अवगुण पर पहले नजर आ जाती है कि ये ऐसा है। अच्छा, और ही उल्टा करते हैं। क्या करते हैं कि जो लोग कभी कभी मिलते हैं, जिनके साथ कभी कभी संपर्क होता है, उनसे तो प्यार से बात कर लेते, हंस के बात करते, और जिनके साथ रोज रहना है उनसे मुंह फुलाकर रहते। पर हमारी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? विशेषताओं पर। क्योंकि बताया ना कि गुण अवगुण सब में है, तो आज से आप विशेषता देखने का चश्मा पहन लें। जैसे जो जोरी होता है तो उसकी नजर किस पर जाती है? हीरे पर ही जाती है। तो आपकी नजर भी अगर एक दूसरे की विशेषताओं पर जाएगी तो कभी भी संबंधों में कड़वाहट नहीं आएगी। देखो, हम आपको इस पर एक महाराष्ट्र साइड का किस्सा सुनाते, हमारे साथ जो हुआ। आपको भी बहुत अनुभव मिलेगा इसको सुनकर कि कैसे हमारे संबंध बिगड़ते हैं और फिर कैसे ठीक हो सकते हैं। कैसे हम एक बार महाराष्ट्र साइड में गए थे तो एक हस्बैंड वाइफ हमारे पास आए और बोले कि बहन जी, हम लोगों में इतना झगड़ा होता है कि बोले एक दिन भी नहीं जाता कि क्लेशेस नहीं हो, और बोले आप कुछ कर सकते हो तो करो। तो हमने उनको अलग से बुलाया मिलने के लिए। अब क्या हुआ, सबसे पहले भाई साहब की बारी आई और उन्होंने अपनी मैडम के अवगुणों की लिस्ट बता दी, इनमें ये बुराई है, ये है, ये है। अब इतना वो बोले आधा घंटे तक कि हमको बोलने के लिए समय नहीं मिला, हम सुनते रहे, क्या करते। अब उसके बाद मैडम की बारी आई, वो भी बताने लगी अपने हस्बैंड के कि ये बुराई है, ये है, ये है, उसने भी बहुत बोला। अब जब उन दोनों का पूरा हो गया तो हमने भाई साहब से पहले रिक्वेस्ट की कि भाई साहब, आपने अपनी मैडम की बहुत से अवगुण गिना दिए, पर मैं समझती हूँ कि एक ना एक गुण तो इनमें होगा, एक ना एक विशेषता तो होगी। तो बोले हाँ, एक ये है। फिर हमने पूछा दूसरी बताओ, तो बोले ये भी है। तो ऐसे उन्होंने 3-4 विशेषता बता दी। तो हमने उनको कहा कि केवल 2 दिन के लिए आप इनकी विशेषता ही देखना। तो बोले ठीक है, 2 दिन की बात है। हमने कहा 2 दिन आप देखना। अब क्या हुआ, ऐसी मैडम से भी कहा कि भाई साहब के आपने इतने सारे अवगुण बता दिए, पर कोई ना कोई तो विशेषता होगी। तो वो बोले कि नहीं, मुझे तो एक भी नहीं दिखती, रियल आपको बताएं जो हुआ। फिर भी हमने उसको बहुत फोर्स किया, हमने कहा कि नहीं, एक तो आप देखो, और उसको कहा कि चलो कुछ नहीं दिखता तो कम से कम ये तो देख सकते हो कि ये भी आत्मा है और उस परमात्मा की संतान है, इसका भी कल्याण हो। तो बोले ठीक है। अब हमने ऐसे होमवर्क दे दिया कि 2 दिन बाद आना और दोनों विशेषता को ही देखना और कुछ नहीं देखना। तो अब क्या हुआ, 2 दिन की बात तो छोड़ो, 1 दिन पूरा बीता और नेक्स्ट डे शिविर के अंदर वो अपनी सारी फैमिली सहित आ गए। बच्चे आ गए, उनके बच्चे बड़े बड़े थे, सेटल थे वेल। तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया इनके। तो बच्चों ने हमको सुनाया कि दीदी ये पहला दिन था जब हमारे घर में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। तो बोले हम देखना चाहते थे कहाँ जा रहे हैं ये लोग। तो क्या कहने का भाव, क्या समझ में आया इससे कि जब हम एक दूसरे की विशेषता देखते हैं, क्योंकि देखो हर मनुष्य के अंदर, हर आत्मा में गुण और अवगुण दोनों ही हैं। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, पर अगर हम एक दूसरे की विशेषता देखते हैं तो हमारे संबंध मधुर होते हैं। और ये एक सूक्ष्म शक्ति होती है, आप समझना इसको। क्यों कहते हैं कि आप, हम रोज आपको कह रहे हैं शुभ भावना रखो, शुभ भावना, कि मान लो कोई व्यक्ति बुरा भी है चलो, पर अगर आपने और उसके प्रति बुरी भावना रखी तो आपकी सूक्ष्म वाइब्रेशंस, सूक्ष्म तरंगे उस व्यक्ति तक पहुंचेगी और उससे आपके संबंध बिगड़ेंगे फिर, क्योंकि आपने ऐसा उसके बारे में सोचा। तो साइंस में भी कहते हैं ना, हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन। और अगर आपने शुभ भावना रखी तो वो शुभ भावना की शक्ति उस तक पहुंचेगी और वो शुभ भावना एक न एक दिन उस आत्मा को परिवर्तन कर देगी। आप करके देखो। कहते हैं कि कोई कोयले से भी काली आत्मा है, मानो किसी में इतने भी अवगुण है, पर अगर आपने उसको शुभ भावना से देखा, चमकता हीरा देखा, डायमंड देखा, तो आपकी शुभ भावना उस कोयले से भी काली आत्मा को परिवर्तन कर देगी। करके देखो, ये सूक्ष्म वाइब्रेशन होता है। तो आज दूसरा होमवर्क, पहला क्या दिया, आज आपको छोटे छोटे दो तीन दे रहे हैं। पहला दिया कि क्षमा वीरस्य भूषणम, दूसरा कि आज आपको सबकी क्या देखना है, विशेषता। घरों में आप रहते, परिवार में रहते या ऑफिसेज में काम करते, हा? और अगर नहीं दिखती तो कम से कम चमकता हीरा आत्मा तो देखना कि ये भी आत्मा है और उस भगवान का ही बच्चा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि विशेषता देखते देखते आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। तो सब विशेषता का चश्मा पहन लो कि विशेषता के अलावा कुछ दिखे ही नहीं। जैसे लाल चश्मा पहनते हैं तो सब लाल ही लाल दिखता है। तो आप भी आज सब कैसा चश्मा पहन लो, विशेषताओं का, कि विशेषता के अलावा कुछ दिखे ही नहीं। नेक्स्ट, सभी शक्तियों का डिटेल तो नहीं लेंगे, अभी तक जो पावर्स आपको बताई वो सारी इम्पोर्टेंट थी, पर अब जो दो मुख्य शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसमें एक जीवन का सार छुपा हुआ है। दोनों को हम एक साथ चर्चा करेंगे। वो शक्तियां हैं, पहली विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ, और दूसरा समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। यहां बताया दोनों शक्तियों में कि देखिए कछुआ जब इसको कर्म करना होता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, नहीं तो समेट लेता है, माना जब चाहे विस्तार और जब चाहे सार। समेटने की शक्ति में बताया अटैची बिस्तर पैक। तो दोनों को हम साथ में चर्चा करते, क्या हमको पैक करके रखना, क्या विस्तार कर लिया हमने। देखिए अब इसको ध्यान से समझे। आज मनुष्य ने अनावश्यक रूप से विस्तार का जाल बनाया हुआ है। किन किन बातों का विस्तार, आप देखो कैसे हम उलझे हुए। बताए ना, हम भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्या लक्ष्य है ये नहीं पता, बस भाग रहे हैं। व्यक्ति मोबाइल हो गया आजकल। अब किन किन बातों का विस्तार देखिए, अनावश्यक इच्छाओं का विस्तार, देखना आप कैसे उलझे हुए हम। एक इच्छा पूरी हुई नहीं, दूसरी, अनावश्यक इच्छाएं। और कहते हैं कि इच्छा कभी भी मनुष्य को अच्छा नहीं बनने देती और इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है, एक होगी और दूसरी पैदा हो जाएंगी। तो अनावश्यक इच्छाओं के जाल में हम उलझे हैं। दूसरा, अपनी समस्याओं का विस्तार। कभी कभी होता है कि समस्याएं कुछ नहीं होती, पर हम सोच सोचकर उसको विकराल रूप दे देते हैं, विस्तार कर दिया। बहुत परेशानी कहते ना कहीं कहीं, है कुछ नहीं, छोटी है, पर सोच सोचकर उसको विकराल रूप दे दिया। तो अनावश्यक समस्याओं का विस्तार, व्यर्थ संकल्पों का विस्तार। कभी कभी होता है टू मच व्यर्थ, अनावश्यक संकल्प पे संकल्प हम चलाते रहते हैं। अपने मित्र संबंधियों का विस्तार, रिलेशंस का विस्तार। कई कहते हैं इतना मित्र संबंधी में उलझे हैं कि कहते हैं बहन जी सारा समय तो इन संबंध निभाने में ही चला जाता है। व्यक्ति ने धंधों का, कारोबार का, बिजनेस का भी इतना विस्तार कर लिया कि कहते हैं कि सारा समय बिजनेस करने में ही जाता है। इतना उसमें उलझ गए कि कहते हैं खुद तो उलझ ही गए, फिर बाद वाले भी उसमें उलझ जाते हैं। किसी किसी को धन कमाने का इतना शौक होता है कि कहते हैं कब्र में पैर है फिर भी धन का मोह नहीं जाता। ठीक है, धन संपत्ति का होना, मित्र संबंधियों का होना ये आवश्यक है। ये नहीं कह रहे कि आप धन नहीं कमाओ, ये एक लिमिट था। पर ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है कि आप ये अपने आप से पूछिए, अगर आप सचमुच बुद्धिवान हैं तो आज पूछिए कि आखिर हमारे साथ क्या जाएगा। धन संपत्ति साथ नहीं जानी, मित्र संबंधी साथ नहीं जाने, साथ जाएगा दुआओं का खाता, श्रेष्ठ कर्म। ठीक है, एक लिमिट तक धन होना आवश्यक है, पर दिखाते ना सिकंदर दोनों हाथ खाली गया। तो ये हम कहना चाहते आज कि आप देखिए कि हम कितने बुद्धिमान हैं कि जो चीज धन संपत्ति मित्र संबंधी हमारे समय पर काम नहीं आते, जो चीज हमारे साथ नहीं जाती, उसमें तो हम 24 घंटे उलझे हुए। कई भाई बहन मिले, बोले बहन जी अच्छा तो बहुत लगता है, इच्छा भी होती अटेंड करे, पर क्या करें हम इतने उलझे हुए अपने बिजनेस में कि समय नहीं मिलता। तो आप सोचिए कि जो चीज साथ नहीं जाती उसमें हम 24 घंटे सारा जीवन उलझे हुए, और जो चीज साथ जाती है, जो चीज समय पर काम आती है, आध्यात्मिकता का बल, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं। तो कितने बुद्धिमान हैं हम। तो ब्रह्मा कुमारीज यही कहती कि जहां आप अपनी लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में सब बातों के लिए समय देते ना, ये समय बिजनेस के लिए, ये समय परिवार के लिए, ये समय एंटरटेनमेंट के लिए, ये समय फिजिकल हेल्थ के लिए, तो वहां अपनी लाइफ स्टाइल में रोज कम से कम एक घंटा आध्यात्मिकता को भी दें। ये नहीं कहते कि काम छोड़कर बैठ जाओ, संबंध नहीं निभाओ या कारोबार नहीं करो, नहीं। ये आपको कहते कि अगर सचमुच आप बुद्धिमान हैं, तो आज ही आप सेट करो अपनी लाइफ स्टाइल को कि जहां हम अपनी जीवन शैली में सब बातों के लिए समय देते, वहां अपनी लाइफ स्टाइल में कम से कम रोज एक घंटा आध्यात्मिकता को भी दें, क्योंकि यही आध्यात्मिकता का बल समय आने पर काम आएगा। देखिए समय आने पर क्या काम आता है, श्रेष्ठ मनोबल ही विपदा के समय हमारा साथी होता है। और याद रखें कि आध्यात्मिकता में शॉर्टकट नहीं होता। कई कहते हैं शॉर्टकट पर नहीं। अच्छा, कई कहते हैं बेन जी बहुत बिजी हैं। तो अपनी बिजी लाइफ को इजी कैसे बनाया जाए, यही तो आध्यात्मिकता सिखाती है। कई भाई बहनों ने पूछा कि बेन जी अभी 2 तारीख तक तो ये शिविर, आगे क्या चलेगा। कईयों ने पूछा बेन जी रोज आना पड़ेगा क्या। तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर रोज 1 घंटा आप आध्यात्मिकता को दे भी दो, चलो कोई बहुत बिजी है तो आधा घंटा आध्यात्मिकता को दे भी दो, तो उसमें कोई बुराई है? है? क्या आगे चलेगा, क्या होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। पर आध्यात्मिकता से आपका SQ बढ़ता है। बताए थे ना SQ माना स्पिरिचुअल क्वेश्चन, और यही आध्यात्मिकता का बल समय आने पर काम आता है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, 2 प्रकार के लोग मिले। कई ऐसे होते हैं बोले बहन जी हमने सब सीख लिया, अब हम घर पे ही मेडिटेशन कर लेंगे। और कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं बहन जी हमारा तो अभी कंसंट्रेशन ही नहीं होता। तो आध्यात्मिकता में न तो अभिमान आए कि मुझे सब आ गया, और न आपको निराशा आए। कई भाई बहन के बोले बहन जी एकदम मन नहीं एकाग्र होता। तो देखिए, इसमें समय लगता है। कोई भी कला आपको सीखनी होती है तो समय, अभ्यास, लगन और विश्वास के साथ करनी होती है। हमारे पास ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनके वर्षों पुराने डिप्रेशन दूर हुए, पर उन्होंने जब 5-6 महीने लगातार मेडिटेशन की प्रैक्टिस की। ऐसे ऐसे हार्ट पेशेंट्स, आपको बताया था कि माउंट आबू में रिसर्च चलती है कि जिनकी 80-90% आर्टरीज ब्लॉक, वो भी ठीक हुए। पर हम कहते हैं कि आप विश्वास और धीरज रखें। आप देखिए, जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास लगता है। मानो आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको ड्राइवर पर विश्वास चाहिए कि ये मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। पेशेंट है तो डॉक्टर में विश्वास चाहिए कि ये मुझे ठीक कर ही देगा। आपस में हस्बैंड वाइफ का विश्वास चाहिए एक दूसरे पर। तो विश्वास ही जीवन में सब कुछ कराता है। तो हम कहते हैं कि आप भी आध्यात्मिकता में विश्वास रखें कि आध्यात्मिकता ही आपके जीवन को संपूर्ण स्वस्थ, खुशनुमा और निश्चिंत बना सकती है। पर धीरज के साथ अगर आप करेंगे तो यही हम कहना चाहते हैं कि जहां आप अपनी लाइफ स्टाइल में सब बातों के लिए समय देते हैं, वहां कम से कम रोज 1 घंटा, या चलो कोई बहुत बिजी हो तो आधा घंटा आध्यात्मिकता को भी दीजिए। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति ही सुख शांति को प्राप्त कर सकता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ जाती है। तो ये आपको मुख्य शक्तियों के बारे में बताया। सारी तो डिटेल नहीं थी, पर आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन वही है, नया आपको नहीं दे रहे हैं, जो उस दिन कराया था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सर्वशक्तिवान प्रभु की छत्र छाया के नीचे हूं। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं वो, ये आज क्लियर हुआ कि ये परमात्मा से मुख्य 8 शक्तियां जो हमको मिलती है। तो आज भी सारा दिन चलते फिरते किस स्मृति में रहना, ये छतरी लगाई है ना, कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया के नीचे। इसी में हम अभी मेडिटेशन कराएंगे। पर अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हम चार्ट भी आपको लिखने को देते हैं। चार्ट की चेकिंग लिख लीजिए पहले कि आज क्या पॉइंट चेक करना है। कौन सा पॉइंट रहेगा आज? 9th, 8th पॉइंट, सबके प्रति निर्दोष दृष्टि। हर एक की विशेषता देखनी है ना, तो सबकी विशेषता आज देखनी है। ये चेकिंग कि सबके प्रति निर्दोष दृष्टि। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये 3rd लेसन डीप मेडिटेशन हमने आज पूरा किया, और कल शिविर में लेसन 4 परमात्मा का अवतरण हम शुरू करेंगे और कल शिविर के अंदर विशेष दृश्य आप लोगों के सामने होगा। कल शिविर में आप सबका अलौकिक जन्म उत्सव मनाया जाएगा। अब ये क्या चीज है, ये कल ही आप अनुभव करना। हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो लास्ट के दो दिन हैं, दोनों दिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम दोनों दिन बहुत अच्छे अच्छे उत्सव मनाएंगे शिविर के दौरान। तो चलिए हम सभी, क्या स्पिरिचुअल इंजेक्शन हुआ, मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे हूँ। अब अभी हम उसी प्रकार से मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। सभी अपने को किसके नीचे अनुभव करें कि हम बाबा की रंग बिरंगी छत्र छाया के नीचे हैं। चलिए चलते हैं बाबा से शक्ति भरने। रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। और कुछ सेकेंड स्वयं का स्वरूप अनुभव करें। कि मैं एक अति शक्तिशाली शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, एक प्रकाश पुंज शक्ति पुंज आत्मा, चमकता सितारा, मुझसे अनंत शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश निकल रहा है। विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। वाह रे मुझ आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य कि मैं आत्मा दुख की दुनिया से निकलकर चिंताओं की चिता से निकलकर प्रभु की छत्र छाया में आ गई। खुशी के जीवन में आ गई, मौज के जीवन में आ गई। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में आ गई। अब कुछ सेकंड के लिए बाबा को भी उसके स्वरूप में देखें कि बाबा भी बिंदु और वो सर्वशक्तिवान। बाबा से अनंत शक्तियां ही शक्तियां निकल रही है। वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य कि जिस भगवान को पाने के लिए लोग तड़पते हैं, साधनाएं करते हैं। आज उस भगवान से मेरा सम्मुख मिलन हो रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम मेरे सामने मैं आत्मा परमात्मा से मंगल मिलन मना रही हूं। आहा, बाबा से मिलकर मैं आत्मा आनंदित हूं। बाबा मुझे इस मिलन में अपने सर्व खजानों की बरसात कर रहे हैं। बाबा से सारे खजाने बरस रहे हैं। खुशी, शक्ति, आनंद, प्यार, ये सारे खजाने मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं। आहा, मैं आत्मा इन खजानों को अपने अंदर समा रही हूं। मेरा एक एक संकल्प शक्तिशाली बन रहा है। इन खजानों को पाकर मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई। अनुभव करें कि बाबा से अनंत शक्तियों की बरसात हो रही है और वो शक्तियां मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में बन रही है। शक्तियां मेरे भीतर समा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं। इस छत्र छाया के अंदर अब कोई भी विघ्न, समस्या प्रवेश नहीं कर सकती। इस छत्र छाया के अंदर मैं सुरक्षित हूं, निश्चिंत हूं, निर्भय हूं। सचमुच बाबा, आपकी छत्र छाया में आकर मैं आत्मा एकदम निश्चिंत हो गई। एकदम हल्की। मैं निर्भय हूँ। आज सारा दिन मैं चलता हूँ तो भी मास्टर सर्वशक्तिवान छत्र छाया के नीचे भोजन करता हूँ तो भी मास्टर सर्वशक्तिवान छत्र छाया के नीचे और रात को सोता हूँ तो भी मास्टर सर्वशक्तिवान छत्र छाया के नीचे तो भरते चले बाबा से शक्तियां इसी संकल्प में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ, सुरक्षित हूँ, निश्चिंत हूँ, निर्भय हूँ। भरते चले बाबा से शक्तियां।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।
ओम शांति। तो आज सारा दिन इसी संकल्प का अभ्यास कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। उड़ाना नहीं छतरी, ठीक है? तो सुरक्षित हूँ, निश्चिंत हूँ, निर्भय हूँ। ओम शांति।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।